क्या कहा तूने? दोबारा कह, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया? मतलब तू और एक्टिंग? इम्पॉसिबल, तो जरूर मजाक कर रहा है। रेहान को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब शान ने उसको ऐसे रिएक्ट करते देखा, फिर सख्त लहजे में बोला, ना तो तूने कुछ गलत सुना है और ना ही मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। ये मेरी कहानी है तो इसे प्रेजेंट भी मैं ही करूँगा। शान का गंभीर चेहरा देखकर अब जाकर रेहान को उसकी बात पर भरोसा पड़ा, पर अब भी वो कुछ परेशान नजर आ रहा था। शान के चुप होने के बाद रेहान ने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा, तू श्योर है ना? मतलब माना कि एक वक्त था जब तेरी एक्टिंग काबिले तारीफ थी, पर उसके बाद तूने इससे पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लिया था। देख, मैं तेरी काबिलियत पर शक नहीं कर रहा, बस बोल रहा हूँ कि एक बार अच्छे से सोच ले। तूने खुद से वादा किया था कि दोबारा कभी एक्टिंग नहीं करेगा, फिर अब? शान शायद रेहान की कश्मकश समझ रहा था। उसने सहजता से जवाब दिया, मैंने जो भी फैसला लिया है बहुत ही सोचने और समझने के बाद लिया है। इस प्ले के जरिए मैं अमरजीत ठाकुर के गुनाहों को सबके सामने ले आऊँगा, और जब सारी दुनिया उनके गुनाहों को जान जाएगी, उनकी इज्जत नाम सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा, और ये काम मैं खुद करना चाहता हूँ। अब रेहान के भाव भी गंभीर हो गए। कुछ देर बाद उसने फिर से सवाल किया, चल ठीक है कि अपना रोल तो खुद निभाने वाला है, पर भाभी के रोल के लिए भी तूने किसी को फाइनल नहीं किया, क्यों? क्योंकि अपना किरदार वो खुद निभाने वाली है। शान ने बड़ी ही सहजता से अपनी बात कही, पर जितना शांत वो लग रहा था उतना ही रेस्टलेस रेहान हो गया था उसकी बात सुनकर। उसने आंखें फाड़े उसे देखते हुए हैरानगी से कहा, व्हाट? आई मीन, तुझे पता है ना कि तू क्या कह रहा है? भाभी और एक्टिंग? शान ने अभी बहुत शांत लहजे में जवाब दिया, हाँ, आरवी ही अपना किरदार निभाएगी। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ठाकुर खानदान को बर्बाद उनका अपना खून करेगा, इसलिए आरवी को इस प्ले का हिस्सा बनना ही होगा। अपने बाप के असली चेहरे को दुनिया के सामने वही लेकर आएगी। रेहान के चेहरे पर चिंता के बादल घेर आए। उसने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, यार तू ठीक कह रहा है, पर एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा भाभी को। मुझे नहीं लगता कि वो ये कर सकेंगी। बिल्कुल कर सकेगी, और उसे कौन सा किसी और के कैरेक्टर को प्ले करना है, अपना ही रोल प्ले करना है, जो वो बखूबी कर लेगी। तो तू उसकी चिंता मत कर, तो बस जाकर तैयारियां चेक कर। कल से किसी भी हाल में रिहर्सल शुरू करना ही है, ताकि अगले 6 महीने के अंदर मैं ठाकुर खानदान को सड़क पर लाकर खड़ा कर सकूं। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर और उनकी बातें चली, उसके बाद रेहान वहां से चला गया और शान अपने इस नए प्ले की स्क्रिप्ट पर काम करने लगा। रात हो चुकी थी, सब डिनर करके अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। इन दिनों आरवी अंशु के साथ उसके रूम में ही सोने लगी थी। आज भी अंशु के रूम में बेड के क्राउन से सर टिकाए बैठी थी। उसके पास ही अंशु सो रही थी। आरवी उसके सर पर हाथ फेर रही थी और अपनी ही सोच में गुम थी। उसे लगा कि रोज की तरह आज भी शान घर नहीं आएगा। फिलहाल वो अर्जुन से हुई बातों के बारे में सोच रही थी। अचानक ही उसके कानों में शान की सख्त आवाज गूंज उठी, कमरे में आओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आरवी चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाहट में आवाज की दिशा में निगाहें घुमाई, तो शान उसके ठीक सामने कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा उसे ही देख रहा था। आरवी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपनी पलकों को कई बार झपकाते हुए उसे देखा, पर जब हर बार उसे शान उसके सामने ही नजर आया तो वो समझ गई कि ये उसका कोई भ्रम या ख्वाब नहीं है, बल्कि सच में शान उसके सामने खड़ा है। आरवी की हैरानी की तो अब कोई सीमा नहीं रह गई थी। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा और हैरानगी से बोली, आप कब आए? आपने तो बताया ही नहीं कि आप आज घर आएंगे, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस एक पल में आरवी भूल चुकी थी कि अभी उनका रिश्ता किस मोड़ पर है। उसके सवालों को सुनकर और एक्सप्रेशन को देखकर शान ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा। तुम शायद भूल रही हो कि ये मेरा घर है, तो मैं कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी को कुछ बताने या उनसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शान के इस एक जवाब ने आरवी का सामना आज की रियलिटी से करवा दिया था। एक पल को उसके चेहरे पर उदासी झलकने लगी, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और बिना किसी भाव के बोली, हाँ, मैं भूल गई थी, थैंक यू याद दिलाने के लिए। अब आप यहाँ आ गए हैं तो बता दीजिए कि क्या वजह है आपके यहाँ आने के पीछे। कमरे में आओ, अभी कुछ बात करनी है तुमसे, और याद रहे, अभी मतलब अभी, वेट करना पसंद नहीं मुझे। शान ने अपनी बात सख्ती से कही और लंबे लंबे डग भरते हुए वहां से चला गया। आरवी कुछ पल उसे जाते हुए देखती रही, फिर उसने अंशु को ठीक से कवर किया और स्लीपर पहनते हुए रूम से बाहर निकल गई। कुछ ही मिनट बाद वो अपने और शान के रूम में थी। शान की पीठ उसके तरफ थी। आरवी कुछ पल इंतजार करती रही कि वो कुछ कहे, पर जब शान ने ना तो पलटकर उसे देखा और ना ही कुछ कहा, तो आखिर में आरवी ने ही उनके बीच की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्यों बुलाया है आपने मुझे? क्या बात करनी है, जल्दी कीजिए, अंशु वहां अकेली है। शान के कानों में आरवी की आवाज पड़ी तो वो उसके तरफ पलट गया। आरवी उसके कुछ कहने का इंतजार करती रही और शान खामोशी से उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसने बिना किसी भाव के कहा, मैं मतलब हमारी कंपनी एक न्यू प्ले ऑर्गेनाइज करने वाली है और उसमें मेन लीड का रोल तुम्हें प्ले करना है। शान ने तो बड़े ही आराम से अपनी बात कही, पर उसकी बात सुनकर आरवी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अचंभित सी उसे देखने लगी और हैरानगी से बोली, क्या मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपकी न्यू प्ले में एक्टिंग करूं? हाँ, शान ने तुरंत ही जवाब दिया। आरवी ने अब घबरा कर कहा,
आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं नहीं कर सकती एक्टिंग वैक्टिंग। मैंने पहले कभी एक्टिंग नहीं की और ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मुझसे नहीं होगा ये। आरवी ने तो साफ इनकार कर दिया, पर उसका इनकार शायद शांत को पसंद नहीं आया। अब तक वो काफी शांत नजर आ रहा था, पर अब उसके चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा था। उसने आंखें छोटी छोटी करके आरवी को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम एक्टिंग कर सकती हो या नहीं, मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें एक्टिंग करनी है। आरवी ने उसको यूं फोर्स करते देखा तो तुरंत ही इनकार करते हुए बोली, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैंने कह दिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। शान कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बेफिक्री से बोला, ठीक है मत मानो तुम मेरी बात, पर इनकार करने से पहले इतना सुन लो कि अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो इसका खामियाजा तुम्हारी माँ को भुगतना पड़ सकता है। आरवी अनुपमा जी का जिक्र सुनते ही कुछ परेशान सी हो गई और शक भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब? याद तो होगा ही तुम्हें कि तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ ने पैसे उधार लिए थे जिन्हें वो अब तक चुका नहीं सकी हैं। अगर तुम शांति से मेरी बात मान लेती हो तो मैं उनका सारा कर्जा चुका दूंगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर महीने उनके अकाउंट में इतने पैसे पहुंच जाएंगे कि वो बिना किसी चिंता के आराम से अपनी आगे की जिंदगी बिता सकेंगी। पर अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो उन्हें 2 दिन के अंदर सारा कर्ज चुकाना होगा, जो वो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकेंगी, फिर उनके सर से वो छत छिन जाएगी।
इतना ही नहीं, मैं उनके आगे की जिंदगी को इतना मुश्किल बना दूंगा जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी, और सबसे बड़ी बात कि अपनी माँ को तकलीफ में देखकर भी तुम कुछ नहीं कर सकोगी। अब फैसला तुम्हारा है। जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देने में कुर्बान कर दी, उन्हें इस उम्र में दर-दर की ठोकरें खाते देखना चाहती हो या उनके आगे की जिंदगी को सुकूनदायक बनाना चाहती हो? अच्छे से सोच समझ कर फैसला लेना, और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। मैं फ्रेश होकर आऊं, तब तक अच्छे से सोच लेना, क्योंकि उसके बाद मुझे तुम्हारा डिसीजन सुनना होगा। शान ने अपनी बात खत्म की और अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया। आरवी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने जो सुना वो सब सच था। मतलब सच में शान ने उसे अनुपमा जी की धमकी दी? वो अविश्वास भरी नजरों से उसे देखती ही रह गई। शान वहां से चला गया, पर आरवी अब भी वहीं खड़ी एकटक बाथरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए शान की कही बातों के बारे में सोचती रही। टू बी कंटिन्यूड।